नमस्कार भारत, 21 जनवरी दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति।
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
करेंगे विश्लेषण डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का।
ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, इस्लामिक स्टेट और अमेरिका करेंटली सीरिया में अलाइड हैं, क्योंकि दोनों ही बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं।
सुनिए कहानी कोहिनूर हीरे की।
दिलीप ने कहा, योर मैजेस्टी, इट इज टू मी अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू प्रेजेंट टू यू द कोहिनूर।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। कैपिटल हिल में हजारों लोगों के सामने शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि वो अमेरिका पहले की नीति पर चलेंगे। उन्होंने अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षित बनाने और नौकरियां वापस लाने का वादा दोहराया। विदेश नीति पर उन्होंने कहा कि वो दुनिया से इस्लामिक चरमपंथ को मिटाने के लिए सभ्य विश्व का नया गठजोड़ बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से पहले माइक पेंस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद औपचारिक भोज में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन भी शामिल हुई। वॉशिंगटन में एक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार समेत शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। वॉशिंगटन में प्रदर्शन हिंसक हो गए, जब प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगा दी और कई जगह तोड़फोड़ की। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए स्टन ग्रेनेड और मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज पर 3,000 से ज्यादा लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। वहीं ह्यूस्टन में प्रवासियों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इनके आयोजकों का कहना है कि ये विरोध के आंदोलन की शुरुआत है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये थे प्रदर्शनकारी। इनमें से एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि इस वक्त अमेरिका में जो कुछ भी गलत है तो वो है आप। निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर हथियार चलाना और चोरों की तरह नकाब पहनना, ये सब गलत है। ये थे प्रदर्शनकारी के शब्द। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भव्य कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है और उनका विरोध भी जारी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में निर्वसित किए गए मेक्सिको के ड्रग माफिया सरगना जोआकिन गजमैन को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। जोआकिन गजमैन पर ड्रग तस्करी, अपहरण, हत्या और साजिश रचने के 17 आरोप लगाए गए हैं। गजमैन ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। जोआकिन गजमैन को अल चैपो के नाम से भी जाना जाता है। गुरुवार को उन्हें मेक्सिको से अमरीका लाया गया था। अमरीका में सरकारी वकीलों ने गजमैन पर सिनालोआ कार्टिल के सरगना रहते हुए अमरीका में हेरोइन, कोकेन और अन्य गैरकानूनी नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाए हैं। सरकारी वकीलों ने गजमैन की 14 अरब डॉलर की संपत्ति को जब्त करने की अपील की है। अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति एडामा बैरो के करीबी सहयोगी के मुताबिक गाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति याहिया जमे राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। याहिया जमे के गाम्बिया छोड़कर मोरिटानिया जाने की संभावना है। पश्चिमी अफ्रीकी देश मोरिटानिया और गिनी के राष्ट्रपति याहिया जमे से गाम्बिया में उनके निवास पर बातचीत कर रहे हैं। याहिया जमे 22 साल तक गाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। हाल ही के चुनाव में उन्हें हार मिली, जिसे मानने से वो इनकार करते रहे, जिसके बाद एडामा बैरो को सेनेगल में गाम्बिया के दूतावास में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। गाम्बिया में सत्ता के हस्तांतरण करवाने के लिए कई पश्चिमी अफ्रीकी देशों की सेनाएं तैनात की गई हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि गुरुवार को सीरिया में चरमपंथी संगठन अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार।
प्लीज रेज योर राइट हैंड एंड रिपीट आफ्टर मी। आई डोनाल्ड जॉन ट्रंप डू सॉलेमली स्वेयर।
आई डोनाल्ड जॉन ट्रंप डू सॉलेमली स्वेयर।
दैट आई विल फेथफुली एक्जीक्यूट।
That I will faithfully execute.
अमरीकी संविधान की रक्षा करने की शपथ के साथ रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप ने बराक ओबामा की जगह ली है जो पिछले 8 वर्ष से अमरीका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपराधों पर लगाम कसने, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, अमरीका में अमरीकियों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर और देश की सीमाओं को मजबूत करने जैसे वायदे किए हैं। शपथ लेने के बाद वॉशिंगटन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical
हम अपने पुराने गठबंधन को बहाल करेंगे और नए गठबंधन भी बनाएंगे। हम उग्र इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ सभ्य दुनिया को एकजुट करेंगे और उसे धरती से पूरी तरह समाप्त कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इन शब्दों का हम करेंगे विश्लेषण, लेकिन पहले आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास, जो टेलीफोन लाइन के जरिए एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो यही बताइए, कैसा समा था वॉशिंगटन में कड़कड़ाती सर्दी के बीच इस पूरे आयोजन के दौरान?
देखिए, बिल्कुल ट्रंप के चिर परिचित अंदाज वाला समारोह था। ट्रंप ट्रंप यूएसए यूएसए के नारे उसी अंदाज में लग रहे थे जैसा उनकी चुनावी रैलियों में होता है। उन्होंने व्यापार हो, विदेश नीति हो, आतंकवाद हो, उन सब पर वही सारी बातें दोहराई जो वो पिछले 1.5 साल से अपनी चुनावी रैलियों में कहते आए। उन्हें इस ठंड में बूंदाबांदी हो रही थी उसमें सुनने आए थे। बिल्कुल तड़के सुबह से ही जब अंधेरा ही था उसी समय से लोग पहुंचने शुरू हो गए थे वहां, तो उन्हें वो बातें पसंद आ रही थी। उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो चाहते भी यही थे कि ट्रंप अपनी बातों पर राष्ट्रपति बनने के बाद भी कायम रहे और सही मायने में बदलाव लाए, और इसलिए यहाँ पर जो उनका भाषण है वो उन्हें पसंद आ रहा था, ये उनके शब्दों में। लेकिन ट्रंप की जो लोकप्रियता है उस पर जो सबसे ताजा सर्वे आया है उसके अनुसार सिर्फ 40% अमरीकी उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं। जो लोग उन्हें सुनने आए थे उनमें से ज्यादातर चेहरे आप कह सकते हैं कि गोरे अमरीका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, खासतौर से वो तबका जिसे लगता है कि ओबामा के 8 सालों में अमरीका की इज्जत कम हो गई है या दुनिया में उसे एक कमजोर देश की तरह देखा जा रहा है।
ब्रजेश जी, आपने इससे पहले भी अमरीका के जो राष्ट्रपति हुए हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह कवर किए हैं, क्या फर्क नजर आया आपको पिछले राष्ट्रपति बराक ओबामा के शपथ ग्रहण समारोह में और इस बार ट्रंप के समारोह में?
देखिए, 2009 का जो समय था जब राष्ट्रपति ओबामा का शपथ ग्रहण हुआ था तो बहुत लोग आज उस पल को याद कर रहे थे। मैं जहां नेशनल मॉल पर खड़ा था और रेडियो प्रसारण कर रहा था वहां सिर धरने की जगह नहीं थी 8 साल पहले। जिस मेट्रो की यात्रा करने में मुझे 30 मिनट लगते थे वो उस दिन भारी भीड़ की वजह से 3 घंटे लगे थे, और मैं गिरते पड़ते आप कह सकते हैं कि प्रसारण में शामिल हो पाया था। और वहां लग रहा था जैसे सही मायनों में इतिहास रचा जा रहा था। लोग रो रहे थे कि वो इस पल के साक्षी बन रहे हैं कि अमेरिका एक काले व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति चुन सकता है। तो आज वो माहौल नहीं नजर आ रहा था मुझे, लेकिन जो लोग यहाँ आए थे वो ट्रंप से वैसी ही उम्मीद रख रहे हैं जैसी उस समय लोगों की ओबामा से थी। एक आखिरी बात जिस पर गौर करने की जरूरत है वो ये कि ये शपथ ग्रहण वॉशिंगटन में हुआ जहां ओबामा चुनाव में जीते थे। पड़ोस में वर्जीनिया है, वहां ओबामा जीते थे, और दूसरी तरफ मैरीलैंड है, वहां भी ओबामा जीते थे, और ये तीनों जगह है जहां ट्रंप चुनाव में हारे हैं। तो जाहिर है वैसी भीड़ यहाँ नहीं जुटी। ये जरूर है कि देश के दूसरे हिस्सों से बूढ़े बूढ़े लोग अपने परिवार के साथ ट्रंप के लिए जमा हुए थे, उस अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने जिसने ट्रंप को एक तरह से जीत दिलवाई है।
ब्रजेश जी, हम देख रहे थे कि एक तरफ ट्रंप के समर्थक थे और दूसरी तरफ उनके विरोध करने वाले जो ट्रंप के विरोधी हैं उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, इस बारे में और जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
जी, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, लगभग 100 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जो पुलिस की तरफ से जानकारी आई है। छिटपुट हिंसा भी हुई और हर तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो अफ्रीकी अमरीकी जो काले लोग हैं उनके हक के लिए, समलैंगिकों के हक के लिए, जलवायु परिवर्तन के जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो और अब आज यानी जब शनिवार अमेरिका में, कल सुबह शनिवार जब होगी तो वाशिंगटन में लगभग हजारों महिलाओं के जुटने की संभावना है विमेन्स मार्च ऑन वाशिंगटन में शामिल होने के लिए। इसमें जो वो है वो अमेरिका के कई अन्य शहरों में भी इस तरह की विरोध रैलियां होंगी और इनमें से कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका कहना है कि ये ट्रंप को एक तरह से खबरदार करने का पैगाम है कि वो उन नीतियों पर अमल करने की सोचे भी नहीं जिनसे महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, अप्रवासियों का नुकसान होगा, वरना ये प्रदर्शन और बढ़ते जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ आज की उस समारोह में यहाँ बताने की जरूरत है कि कांग्रेस के लगभग 60 डेमोक्रेट सदस्यों ने भी ट्रंप के विरोध में इनॉग्रेशन का बॉयकॉट किया।
बहुत शुक्रिया, ये थे ब्रजेश उपाध्याय बीबीसी संवाददाता वॉशिंगटन से। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उग्र इस्लामिक चरमपंथ को जड़ से मिटाने की बात कही है अपने संबोधन में। इसे आखिर कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, यही जानने के लिए मैंने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान से बात की।
देखिए ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें इस्लामिक स्टेट और अमेरिका करंटली सीरिया में अलाइड हैं क्योंकि दोनों ही बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं। यमन में अमेरिका और आईसिस और सऊदी अरेबिया मिलकर ईरान के खिलाफ और हुतीस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कई ऐसे जगहों हैं जहां पर वो एक किस्म से टैक्टिकल अलाइज हैं। और ये जब कह रहे हैं कि हम इस्लामिक स्टेट को खत्म कर दें, इस्लामिक स्टेट कोई ऐसा चीज थोड़ी है जिसको आप तोड़ फोड़ के फेंक दें। आप अगर इराक में जिस तरह से सेनेटर क्रूज ने कहा था कि मैं इराक और सीरिया को कारपेट बॉम्ब करूंगा, तो एक से एक अगर आप और बमबारी करें, सिविलियंस को मारेंगे तो और लोग मोटिवेट होंगे टेररिज्म में। दूसरी चीज ये है उसके वजह से रेफ्यूजीज क्रिएट होंगे। बावजूद मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये उनकी सबसे बेहतर तकरीर थी, मैंने इससे बेहतर तकरीर उन्हें देते हुए नहीं सुना। ये पहली बार उन्होंने अपने आप को सारे अमरीका के प्रेसिडेंट की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की।
और जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में बड़े बड़े वादे किए हैं,
जो प्रॉमिसेस इन्होंने किए हैं बहुत ग्रैंड हैं। एक बात तो जो शुरू से थी जिसके वजह से उन्होंने जीत गया कि अमेरिका फर्स्ट के हर मामले में, सिक्योरिटी का मामला हो, ट्रेड का मामला हो, इकोनॉमिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, हर मामले में वो अब अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका के इंटरेस्ट पहले देखेंगे बनिस्बत के दुनिया के इंटरेस्ट। उन्होंने इस तरह की बातें बहुत की। उन्होंने कहा कि पिछले गवर्नमेंट्स में अमेरिका की जो मिडिल क्लास की दौलत है, उनकी जो जमाई हुई पूंजी है, वो सारी दुनिया में लुटा दी, उनकी इज्जत और उनके ख्वाब वापस उनको लौटा देंगे। लेकिन अपनी जो कोर चीजें हैं उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। ये शायद पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिन्होंने कहा कि मैं रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को प्लानेट से हटा दूंगा। तो उन्होंने अपने जो की एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीते हैं उस पे वो कायम रहे।
आपको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसी बात नहीं कही, कहने से चूक गए जो वो अक्सर कहते रहते थे, या उन्हें इस मौके पर कहना चाहिए था?
देखिए एक मसला जो बहुत अहम हो गया है कि इस मुल्क में पार्टीशनशिप या डिविजन बहुत बढ़ गया, रेशियल डिविजन भी बढ़ गए हैं और एक किस्म से अमेरिका में मुख्तलिफ तबकों के बीच में जो हेटफुल स्पीच है वो भी बढ़ गई है। और इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उसको यूनाइट किया जा सकता था।
आपको लगता है कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो लिखी पढ़ी बातें जो हमेशा होती रही हैं रवायत परंपरा के मुताबिक वही सब कुछ बातें थीं, या फिर इस बार जो कुछ कहा गया वो कुछ हटकर था लीक से?
नहीं, इसमें थोड़ा कम्बैटिव नेचर थी। जब उन्होंने ये बात कही कि मैं अमेरिका की जो लूटी हुई दौलत है उसे वापस बुला लूंगा, तो उनका जो हाथ का जेस्चर था वो सदर ओबामा की तरफ पॉइंट कर रहा था।
जब तक राष्ट्रपति नहीं बने थे बात अलग थी, अब राष्ट्रपति बन गए हैं। अब राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं आप?
बड़ी बड़ी से बातें कर रहे हैं कि मैं 100 पहले 100 दिन में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो सारे चीजें जो एग्जीक्यूट होना है उनके लिए जो लोग हैं वो नहीं आ रहे। तो इस वजह से मुझे लगता कि 5-6 महीने के बाद इस गवर्नमेंट को फिर से अपने आप को रीसेट करना पड़ेगा. हो सकता कि इवन कैबिनेट लेवल पे भी चेंजेस आए जब ये समझेंगे कि अरे बोलना एक बात है करना दूसरी बात है.
अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले आधिकारिक संबोधन का विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर मुख्तदर खान. और आइए अब देखते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं. जी हरिता, क्या है खबरें आज
दिल्ली से छपने वाले अखबारों में भी डोनाल्ड ट्रंप छाए हैं. सभी अखबारों के पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर, कहीं पर वो अकेले, कहीं पर वो उनकी पत्नी के साथ और अन्य कई लोगों के साथ भी नजर आ रहे हैं. नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि भारत के काम आ सकता है ये ट्रंप कार्ड. वो इस बात का आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने कहा है कि चीन को काबू में रखने के लिए भारत जो है एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रह सकता है. वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत. और इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बड़ी सी तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें कैपिटल नज़र आ रहा है, खचाखच भरा है लोगों से, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शपथ ग्रहण के लिए बाहर आ रही हैं. अब बढ़ते हैं भारत में जलीकट्टू का मुद्दा आजकल छाया हुआ है. द हिंदू ने लिखा है कि जलीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार अध्यादेश लाने जा रही है. राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार के सामने रखा जिसे मंजूरी दे दी गई है. और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा है कि एक दो दिन में जलीकट्टू जो है शुरू हो जाएगा. लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंध हटने तक मरीना बीच पर डटे रहने की बात कही है. शायद उनका आश्वासन उनके लिए काफ़ी नहीं है. एक और बयान जो है आरएसएस का वो कल छाया रहा खबरों में. इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने शुक्रवार को कहा कि बीआर अंबेडकर यानी कि अंबेडकर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी ज़रूरत को ख़त्म किया जाना चाहिए और सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए.
क्या हरिता ये संयोग की बात है कि जब जब चुनाव का मौसम आता है, चुनाव के दिन नज़दीक आते हैं, आरक्षण के संबंधित बयान सामने आने लगते हैं?
जी, इससे पहले आरएसएस प्रमुख ने भी जो है बिहार चुनाव से पहले
बिल्कुल
बयान दिया था और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था.
हंगामा हुआ
और कहते हैं कि उसका नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ा है. इसके अलावा चुनाव की बात हो रही है तो जनसत्ता ने लिखा है गठबंधन पर अंदेशे के बादल हैं. उत्तर प्रदेश में जो है सीटों को लेकर पेच फंस गया है. सपा ने जारी कर दिए 209 उम्मीदवारों की सूची और कांग्रेस 130 सीटें मांग रही है.
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए. और अब विवेचना की बारी. उस हीरे की कहानी जो एक बहुत खास हीरा है, मुगलों के तख्त ताउस से लेकर नादिर शाह के खजाने तक, रंजीत सिंह की पगड़ी से लेकर महारानी विक्टोरिया के मुकुट तक, कोहिनूर हीरे की एक लंबी कहानी है जिसे समेटा है अपनी विवेचना में रेहान फजल ने.
यूं तो कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही है. सबसे पहले ये मांग की थी भारत ने ब्रिटेन से आजादी के तुरंत बाद. 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन को पत्र लिखकर कहा था कि कोहिनूर उन्हें वापस किया जाए. नवंबर 2000 में तालिबान ने मांग की कि कोहिनूर उन्हें लौटाया जाए क्योंकि वो कानूनन अफगानिस्तान की संपत्ति है. 2002 में जब क्वीन मदर का देहांत हुआ तो कोहिनूर जड़े ताज को उनके ताबूत के ऊपर रखा गया. तब ब्रिटेन में रहने वाले सिखों ने इस बात पर जबरदस्त एतराज किया कि उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के देश से चुराए गए सामान की नुमाइश की जा रही है. कोहिनूर पुस्तक के लेखक विलियम डैलरेम्पल कहते हैं,
The first reference we have to the Kohinoor is as late as 1750 in the history of Muhammad Marvi.
कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के वर्णन में मिलता है. मारवी लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था. वो उस समय तख्ते ताऊस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर हेरात ले गया था. कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था. तख्त ताऊस को बनाने में ताजमहल से दोगुना धन लगा था. बाद में कोहिनूर को तख्त ताऊस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बांह में बांध सके.
नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की सेना की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था. दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम करवाया जिसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मशहूर इतिहासकार विलियम फ्लोर एक लेख में लिखते हैं,
जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा, तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्लेआम का आदेश दिया। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। मोहम्मद शाह के सेनापति निजामुल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय वो उनसे अपना बदला ले। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि उनके दिल्ली छोड़ने से पहले वो उनको 100 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक निजाम ने अपनी ही राजधानी को लूटकर नादिर शाह को वो धन चुकाया। संक्षेप में, एक क्षण में 348 सालों में मुगलों की जमा की हुई दौलत का मालिक कोई दूसरा हो गया।
विलियम डॉलरिम्पल और अनीता आनंद ने कोहनूर का इतिहास खंगालने में बहुत मेहनत की है।
I started by talking to all the experts on Mughal gems and gemologists and diamond history.
मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बातचीत कर अपने शोध की शुरुआत की। उनमें से अधिकतर की राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित हैं, वो सही नहीं हैं। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थियो मेटकॉफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबिरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा है। नादिर शाह ने फौरन मोहम्मद शाह से कहा, आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियां आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया।
दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आरा ये नादरी में लिखा है।
दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताऊस, जिसमें अभी तक कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़े हुए थे। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 4,000 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लादकर हेरात के लिए रवाना किया गया।
नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को पानी के जहाज से भेजने का फैसला किया। कोहिनूर पुस्तक की सह लेखिका अनीता आनंद बताती हैं।
वो शिप में जब लोड किया गया था, क्रू को नहीं पता था कि वो क्या कैरी कर रहे थे इंग्लैंड। खाली 3 शख्स को पता था कि ये एक कोहिनूर है हमारे मौजूद। जब ये शिप, जिसका नाम था मेडिया, जब ये लॉन्च किया गया था, मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर थोड़े से लोग बीमार हो गए थे, फिर और बीमार हो गए थे और फिर कॉलरा फैल गया था शिप पर। पर कैप्टन, जिनका नाम था लॉकी, उसने कहा क्रू को कि कोई चिंता ना करो, मॉरिशस आ रहा है, बस हम मॉरिशस में हम दवाई लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉरिशस अप्रोच किया शिप ने मीडिया। मॉरिशन लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए प्लेग शिप, तो उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर तुम पास में आओगे मैं कैनन से तुम्हें ब्लो करेंगे वाटर से। क्रू जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड थे कॉलरा से, और काफी सारे लोग आई थिंक वर वेरी वेरी सिक एट दिस टाइम, प्रे कर रहे थे बस हमें इंग्लैंड पहुंचने दो, बस इंग्लैंड पहुंचने दो। और फिर उनको ना एक इतनी बड़ी टाइफून मिली, इट ऑलमोस्ट ब्रोक द शिप इन हाफ व्हेन दे अराइव्ड इन इंग्लैंड। फिर उनको पता चला कि कोहिनूर थी उनकी जो कार्गो, फिर उनको लगा कि हाँ शायद कोहिनूर की वाकई में थोड़े से डार्क पावर्स होंगे।
जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया।
2 years after the British seized the stone in 1849, it was put into the Great Exhibition in London in the Crystal Palace.
कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद इसकी इंग्लैंड में नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा, लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें उसके अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। ये हीरा पूरब में ब्रिटिश साम्राज्य के अनोखेपन का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था।
इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दिलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गई। वहीं पर दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें भेंट किया।
क्वीन विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी जो हुकूमत जो थी उन्होंने क्या किया था एक बच्चे के साथ, और क्योंकि उनके फीलिंग्स जो थे दिलीप सिंह के क्वेश्चन में, शी फेल्ट शी रियली लाइक्ड हिम, सो शी फेल्ट बैड अबाउट इट। एंड इवन दो कोहिनूर आई थी 2 years बिफोर दिलीप सिंह, शी नेवर वोर इट इन पब्लिक, शी नेवर फेल्ट कम्फर्टेबल, क्योंकि शायद लगता था उनको कि दिलीप क्या सोचेगा। तो एक था पोर्ट्रेट पेंटर उस जमाने में बहुत मशहूर, विंटर हाल्टर नाम था, उसने कहा था कि विंटर हाल्टर तुम एक पोर्ट्रेट बनाओ दिलीप सिंह का, मैंने पैलेस में मैंने हैंग करना है। तो जबकि वो दिलीप सिंह खड़ा था पोडियम पर, वो आर्टिस्ट पेंट कर रहा था, तो क्वीन विक्टोरिया ने एक गार्ड को बुलाया कि हाँ अंदर आओ, दिलीप तुम ये देखना चाहते हो। और एक बॉक्स वो कैरी कर रहा था, उसमें पड़ा था कोहिनूर जो कि कट किया गया था। बाय दिस टाइम अल्बर्ट हैड कट इट, सो इट डिड नॉट लुक एट ऑल लाइक द कोहिनूर दैट दिलीप सिंह यूज्ड टू वेयर व्हेन ही वाज द महाराजा ऑफ पंजाब। और फिर दिलीप ने कहा, योर मैजेस्टी, इट इज टू मी अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू प्रेजेंट टू यू द कोहिनूर। दिस गेव हर परमिशन टू वेयर द डायमंड एंड शी डिड। आफ्टर दैट शी वोर इट ऑल द टाइम अंटिल शी डाइड।
रानी विक्टोरिया के बहुत प्रिय होने के बावजूद कुछ सालों बाद दिलीप सिंह ने इच्छा प्रकट की कि वो अपनी असली माँ जिंदन कौर से मिलने भारत जाएंगे। जिंदन तब नेपाल में रह रही थी, उन्हें अपने बेटे से मिलने कलकत्ता लाया गया।
दिलीप सिंह वाज देयर फर्स्ट, रानी जिंदन वाज ब्रॉट इन, दे मेट फॉर अ शॉर्ट व्हाइल एंड रानी जिंदन सेड शी इज नेवर गोइंग टू लीव हिम अगेन, शी इज गोइंग टू ट्रैवल विद हिम व्हेयरएवर ही गोस। फिर उनके फाइल्स में ये पता चलता है कि देयर वर सिख सेलर्स कमिंग बैक फ्रॉम चाइना who heard ke jindan aa gayi dilip singh hamara maharaja hai yahan par in kolkata, and they surrounded the spence hotel and they started shouting bolo sonehal sasri akal so loud that it shook the windows, and so the british quickly put them on a ship and shipped them both back to england.
Udhar dilip singh dheere dheere rani victoria ke khilaf hote chale gaye, unhe lagne laga ki unhone unke sath beinsafi ki hai। उनके मन में ये बात भी घर कर गई कि वो अपने पुराने साम्राज्य को दोबारा जीतेंगे। वो भारत के लिए रवाना भी हुए लेकिन अदन से आगे नहीं बढ़ पाए। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें व उनके परिवार को पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली होटल में उनकी लाश मिली। उस समय उनके साथ उनके परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रंजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
और इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। हजारों लोगों के सामने शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि वो अमेरिका पहले की नीति पर चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। वॉशिंगटन में हिंसक विरोध प्रदर्शन, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में निर्वासित किए गए मेक्सिको के ड्रग माफिया सरगना जोआकिन गजमैन को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति एडमा बैरो के एक करीबी ने कहा है कि गाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति याह्या जमे राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो देश छोड़कर मॉरिटानिया भी जा सकते हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार। भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।